उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
पूर्वोत्तर डायरी में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी और साथ ही साथ इन अष्टलक्ष्मी राज्यों की सुंदरता और गीत संगीत को भी हम शब्दों के माध्यम से महसूस करने का प्रयास करेंगे।
पूर्वोत्तर डायरी।
तो आधे घंटे के लिए चलते हैं इस सफर पर ये देखने की पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक विरासत के साथ जीवन शैली में कितनी सहजता है कितनी प्रकृति से निकटता है हम आवाज और शब्दों से इस निकटता को महसूस करेंगे। पूर्वोत्तर में है इसी सहज सरल प्राकृतिक सरलता जो इसे दिव्य तो बनाती ही है साथ ही इस सरलता में आध्यात्म और अनंत से अपनी पहचान हम तलाश सकते हैं। तो आइए चलें पूर्वोत्तर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। देश के कई राज्यों ने इस पहल को गंभीरता से लिया और जनता इस अभियान में शामिल हुई। हमारे इम्फाल संवाददाता जे थॉकचोंग ने हमें बताया कि मणिपुर इस मिशन में कैसे आगे बढ़ रहा है।
We all know that global water crisis, water scarcity, water pollution is affecting billions of people across the globe. In Manipur, a voluntary organization called Eco Network based at Hairok village of Thawal district is taking all the risks at any cost to make their river clean.
हम सभी जानते हैं कि वैश्विक जल संकट, जल की कमी, जल प्रदूषण ये दुनिया भर में लोगों को बुरी तरह प्रभावित करने लगा है। मणिपुर में थावल जिले के हैरोक गांव स्थित इको नेटवर्क नाम का एक स्वयंसेवी संगठन है जो अपनी नदी को साफ करने के लिए हर कीमत पर जोखिम उठाते हुए भी काम कर रहा है। इस संगठन ने सरकार से या किसी भी वित्तीय सहायता के बिना फरवरी 2023 से नदी सफाई का अभियान शुरू किया था। स्थानीय लोगों और मणिपुर की एक महिला अधिकारी मीरा पैबिस के सहयोग से मात्र 15 सदस्यों के इस समूह के साथ हर रविवार को हैरोक वांगचिंग नदी की सफाई का काम करते हैं। उन्होंने न सिर्फ नदी की सफाई की है बल्कि घर घर और आसपास के उद्यान पार्कों से भी कूड़ा करकट उठाना शुरू किया। इको नेटवर्क हैरोक के सदस्य अहोम संगबांग रोशनकांत ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए बताया कि नदी के किनारे वनों की कटाई और रेत खनन करने के कारण नदी का पानी जहरीला होना शुरू हो गया था। इसीलिए इको नेटवर्क हैरोक नदी को पुनर्जीवित करने और लोगों में नदी के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया था।
We the Eco Network Hairok was formed to revive the deteriorating condition of the Hairok Wangjing River to tackle the environmental crisis plaguing the Hairok Wangjing River. We had been conducting river rejuvenation and cleanliness campaign under the theme Safe River, Clean Water. in collaboration with our Lokin Clubs, Myra Paibi and students.
Ahun Sang Bang Roshan Kant Eco Club Hairo ke sadasya ne safai aur vikas ke disha mein ise ek aage badhta hua kadam bataya aur Eco Network Hairo ne sthaniya logon ke sath sath chhatron se plastic ke kachre se hone wale nuksan aur use पानी बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया और साथ ही साथ कई कार्यक्रम भी बनाए.
Combating water pollution and water scarcity problem is critical for protecting our public health, preserving our ecosystem and ensuring sustainable economic development. We appeal the concerned authority government to look into the matter at earliest and it requires stricter implementation of rules and regulation from the concerned government authorities and expert.
लोगों को स्वच्छ रहने के लिए प्रोत्साहित करना और सफाई में मदद करना इस संस्था का उद्देश्य है. स्वच्छ रहने की स्थिति मानसिक स्पष्टता और स्वास्थ्य लाभ को भी बढ़ावा देती है.
क्लीनिंग इज द स्टेप टुवर्ड्स आवर डेवलपमेंट. द इको नेटवर्क हैरोक हैज डन मेनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स विद द लोकल्स एज वेल एज विद द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग डैमेजेस क्रिएटेड बाय प्लास्टिक वेस्ट and requirement on saving water. We should encourage people to stay clean and help in cleaning. The state of being clean promotes maintained clarity and health benefits. JJ Toksom, Akashvani News, Imphal.
देश के कई अन्य राज्यों की ही तरह पूर्वोत्तर में भी कहीं कहीं तेज गर्मी देखने को मिल रही है. त्रिपुरा में पिछले कई दिनों से चल रही भीषण गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि उसका प्रभाव जानवरों पर भी पड़ रहा है. सिपाहीजाला चिड़ियाघर प्राधिकरण को ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जानवर बीमार ना पड़े इसलिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया है ताकि शेर बाघ तेंदुए जैसे जानवर गर्मी के कारण बीमार ना पड़े. हमारे अगरतला संवाददाता कुणाल शिंदे ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन का दंश मानव जाति पर अब भारी पड़ने लगा है.
द स्टिंगिंग इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज हिटिंग द मैनकाइंड हार्ड एंड इवन एनिमल्स आर नो एक्सेप्शन टू इट. The Sipaijala Zoo, the only zoo in Tripura which has several endangered species such as lions, tigers, leopards, exotic birds, bears and hippopotamus is seen taking requisite actions to ensure that animals in their enclosure do not fall ill due to depleting electrolyte levels. As part of the measure to provide some respite to the animals from soaring heat coupled with high humidity, the zoo authority has been splashing gallons of water in the enclosure of lions, tigers, leopards and are also keeping ice blocks in the cage so that the intensity of heat is reduced.
Sipahijala Chidiyaghar Tripura ka ekmatra chidiyaghar hai jisme sher, baagh, tendue, videshi pakshi, bhalu aur daryai ghode jaisi kai prajatiyan hain. Ye sunishchit karne ke liye avashyak karyawai ki ja rahi hai ki unke baade mein garmi ke star ke karan koi bimar na pade. जानवरों को बढ़ती गर्मी के साथ उच्च आर्द्रता से कुछ राहत प्रदान करने के उपायों के अंतर्गत चिड़ियाघर प्राधिकरण शेर बाघ और तेंदुओं के बाड़े में पानी का छिड़काव लगातार कर रहा है और बर्फ के ब्लॉक यानी सिल्लियां भी रख रहा है ताकि गर्मी की तीव्रता पिंजरे में कम हो सके. सिपाहीजाला चिड़ियाघर के निदेशक विश्वजीत दास से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा
वी आर टेकिंग लॉट ऑफ मेजर्स एक्चुअली सो लाइक giving the proper high water content fruits to the animals and spraying of water regularly and keeping the service room that we call night shelter cool and spraying water. Even we are giving birth to the our zoo animals and these are we are taking lots of measures and so far all the animals are in good condition. Moreover, we are in some enclosure of bigger carnivores like tigers and in zoo hospital also we are giving air cooler also like in some birds we have exotic birds so there we are giving fan also to keep the room cooler and we are doing our best and hopefully there will be so far animal are good now as of quite vigilant and as a team we are working very hard and we are prepared for this also because we have taken a lot of precautionary measures and we are monitoring on regular basis and all our team we are very vigilant about this, and hopefully we'll overcome this. We are taking around 30 number of ice blocks per day. If required, we'll take more also, but 30 is sufficient. Even the fruit content what we are giving the animal to our animals, so we are keeping all those fruits in a bucket, and in the we dip all those fruits in the ice, and just we frozen fruits, you can say. We are giving frozen fruits also. Recently we got the instruction from Central Zoo Authority also. They have given some preventive measures, what to do, what not to do. So movement of animal from one enclosure to another enclosure, we are not doing it. And properly, like carnivore, like meat and all, we are not giving it in the noon time. We are giving it in the afternoon time, because due to this high temperature, they may not take the food properly. But other animals, we are giving this frozen fruits mixed with ice and all.
चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक केशव देवनाथ ने कहा कि बाघ के बाड़े में बर्फ की सिल्लियां रखने, पानी का छिड़काव करने और कूलर लगाने के अलावा एक विशिष्ट तरह से आहार का पैटर्न बनाया गया है और उसका पालन किया जा रहा है, यानी कि उनके खाने पीने का एक अलग से चार्ट बनाया गया है, ताकि ये देखा जा सके कि भोजन खाने के बाद जानवरों पर गर्मी का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके.
That control heat web to the animals. Particularly, we have arranged ice cube for particular for every enclosure, every animals like lion, tiger, leopard, including omnivore animals like bear, monkeys also. Then they changed some food items also. We included like watermelons in the food diets, like our omnivore animals and herbivore animals. In case of carnivore animals like lion, tiger, we have added oral radiated solution for maintain their electrolyte balance in the body systems. They mean feel comfort. In addition to that, we have arranged lots of waters and spraying the waters in the natural area around the natural area around the enclosure also, to maintain their body conditions, good conditions. Till now, though not yet situation arises for animals become sick or disease condition for heat will not yet arise till now. Still not yet arise situation. Now the animals in the rescue animals, some rescue got this is there only. But not heat, not yet arrive situation, still not arrive there.
जैसा कि पर्यावरण विदों का ये मानना है कि तापमान में वृद्धि लगातार हो रही है और मनुष्य अधिक पेड़ लगाकर और जलवायु के लिए हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अब ये समय आ पहुंचा है कि आप अगली पीढ़ी को बेहतर भविष्य प्रदान करने के उद्देश्य से काम करें.
As the environmentalists observe that the rise in temperature is just a tip of an iceberg, it is time for humans to get into a combat mode by planting more trees and reducing the emission of greenhouse gases that cause further damage to the planet, and work with an objective to provide better future to the next generation. Kunal Shinde from Akashvani, Agartala.
यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव और पक्षियों के लिए न केवल एक अभयारण्य है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि एक शैक्षणिक और अनुसंधान केंद्र भी है. अभयारण्य के भीतर कई झीलें भी हैं, यहाँ नौका विहार की सुविधा भी है और यहाँ आवासीय पक्षियों, प्रवासी पक्षियों, आर्किड गार्डन, नौका विहार की सुविधा, वन्य जीव वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर और हाथी की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं, और साथ ही साथ रबर और कॉफी के बागान, जिसकी करीब 150 से अधिक प्रजातियां हैं और ये पूरे वर्ष पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती हैं. पशु प्रेमियों के लिए विशेष रूप से यहाँ चश्माधारी बंदर प्रजाति है बंदरों की, जो केवल इसी अभयारण्य में देखने को मिलती है. फलों की बात करें तो संतरा ही नहीं, बल्कि त्रिपुरा में अनानास की बेहतरीन किस्में पाई जाती हैं। इसमें से सबसे सुंदर किस्म है क्वीन अनानास, कहा जाता है इसे, और विशेष रूप से ये त्रिपुरा में ही उगाई जाती है. यहाँ बड़े पैमाने पर अनानास की खेती की जाती है और बाजारों में इसकी काफी मांग है. कुछ वर्ष पहले की बात है जब त्रिपुरा के दौरे पर आए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्वीन पाइनएप्पल को राज्य का फल घोषित किया था और त्रिपुरा को देश में क्वीन अनानास का सबसे बड़ा उत्पादक होने का गौरव तो प्राप्त है ही। क्वीन अनानास की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो अनानास की अन्य किस्मों से इसे अलग करती हैं और वे हैं इसकी सुखद सुगंध, रसीला स्वाद और वजन का हल्का होना। राज्य के बागवानी विभाग ने बताया कि खरीदारों के बीच क्वीन अनानास की मांग बहुत ज्यादा है। उनके मुताबिक जब विदेशी मेहमान त्रिपुरा आते हैं तो उनका स्वागत क्वीन अनानास खिलाकर किया जाता है। त्रिपुरा के क्वीन अनानास का दिल्ली में भी अच्छा खासा बाजार है। त्रिपुरा राज्य में अनानास का उत्पादन बढ़ाने के लिए बागवानी और कृषि विभाग ने कई किसान कल्याण कार्यक्रम शुरू किए हैं और पिछले कुछ वर्षों में अनानास की बागवानी के लिए उत्पादकों को बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत काफी जानकारियां दी जा रही हैं। इसके अलावा राज्य के अनानास उत्पादक कम लागत पर राज्य के बाहर बड़ी मात्रा में अनानास भेजने में सक्षम हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो 2021-22 में राज्य में 11,505 हेक्टेयर क्षेत्र में अनानास की खेती की गई और इसमें जो किस्में उगाई गई उसमें करीब 35% अनानास की क्वींस किस्म थी और 65% अन्य किस्में। तो त्रिपुरा अगर आप आए तो यहाँ का क्वीन अनानास खाना ना भूले क्योंकि ये बेहतरीन अनानास है। वैसे प्रकृति की अद्भुत छटा को समेटे हुए हैं पूर्वोत्तर के सभी राज्य। दूर दूर तक हिम से आच्छादित ऊंची चोटियों को सहज ही देखा जा सकता है। त्रिपुरा राज्य जो है वो जल संसाधनों से भरपूर है। राज्य में कम 10 प्रमुख नदियों में 793 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी वार्षिक तौर पर प्रवाहित होता है और ये सभी नदियां वर्षा पर आधारित हैं। इन्हें हम वर्षा आश्रित भी कह सकते हैं। अपने छोटे से भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ही त्रिपुरा मानव पर्यटकों के लिए शानदार महलों, शानदार रॉक कट नक्काशी यानी जिसे हम कह सकते हैं कि पत्थर पर उकेरी गई सुंदर मूर्तियों और चट्टानों या पत्थर पर तराशी गई छवियों के रूप में देखते हैं जो बहुत ही आकर्षक लगती हैं। द लेक पैलेस ऑफ त्रिपुरा या नीर महल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा महल कहा जाता है। ये महल पूर्व शाही महल राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के महान विजन दृष्टिकोण का परिणाम है। ये राजा और उनके परिवार के ग्रीष्मकालीन महल के रूप में बनाया गया था और आज भी इसकी नयनाभिराम अलंकृत रचना इसके शानदार अतीत को दर्शाती है। वर्षों पहले उज्जैन्त पैलेस एक शाही महल था। अगरतला शहर इस महल के आसपास ही केंद्रित है। 1901 में बनाए गए इस महल में शानदार टाइलों वाले फर्श, घुमावदार लकड़ी से बनाई गई छत और सुंदर दरवाजे हैं। उज्जैन्त पैलेस को ये नाम त्रिपुरा के एक नियमित पर्यटक हम कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। टैगोर बाबू त्रिपुरा बहुत बार आए। महल में एक बड़ा सा हॉल है, सिंहासन कक्ष है, दरबार हॉल, पुस्तकालय और साथ ही साथ एक स्वागत कक्ष भी है। उज्जैन्त पैलेस त्रिपुरा का शाही महल है जो राजधानी अगरतला में ही है। इस इससे पहले 2011 तक त्रिपुरा विधानसभा के लिए इसे बैठक स्थल के रूप में उपयोग किया जाता था और अब ये संग्रहालय और अगरतला के एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। पैलेस अगरतला में उद्यानों की हरी भरी हरियाली से घिरी हुई है, बीच में एक छोटी सी झील के किनारे पर है। उज्जैन पैलेस पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक माना जाता है और करीब 800 एकड़ से अधिक इलाके को ये कवर करता है। ये पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले विभिन्न समुदायों, संप्रदायों और रीति रिवाजों, प्रथाओं, कला, संस्कृति, परंपरा और शिल्प को बहुत भली प्रकार से आपके सामने रखता है। इसके अलावा नीर महल में शाम को साउंड लाइट शो भी दिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती हैं और हर वर्ष महल में एक जलोत्सव आयोजित किया जाता है। नौका दौड़ में हिस्सा लेने के लिए भी यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और अब बारी है बौद्ध मंदिर की। महामुनि बौद्ध मंदिर त्रिपुरा में ये एक तरह से बौद्ध धर्म का प्रमुख मंदिर कहा जा सकता है और पुरातात्विक साक्ष्यों से ये पता चलता है कि बौद्धों ने इस क्षेत्र में बहुत पहले से ही निवास किया है। कई बौद्ध शासकों ने इस राज्य पर, इस जगह पर शासन किया और यहाँ की संस्कृति पर एक तरह से स्थायी प्रभाव छोड़ा। शताब्दी में बौद्ध शासकों की हार के कारण इस समूचे इलाके से बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया था। त्रिपुरा में इसका पुनरुद्धार होना शुरू हुआ 17वीं शताब्दी ईस्वी से और तब से राज्य में स्थायी रूप से रहते हैं। त्रिपुरा में हैंडलूम बुनाई को यहाँ का मुख्य उद्योग कहा जा सकता है। त्रिपुरा में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक अम्बासा भी अपनी समृद्ध संस्कृति और आकर्षक परिदृश्य के लिए जाना जाता है। अम्बासा में त्रिपुरा के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं और उनमें से एक है जगन्नाथ मंदिर। त्रिपुरा राज्य की जम्पुई पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है। ये 930 मीटर यानी कि करीब 3050 फुट ऊंचा पहाड़ है और त्रिपुरा का सबसे ऊंचा बिंदु इसको माना जाता है और प्रशासनिक रूप से ये उत्तरी त्रिपुरा जिले में स्थित है। प्राचीन महल और मंदिरों का यहाँ अपना एक अलग ही समृद्ध इतिहास रहा है। देश के कई प्राचीन मंदिर और महल पर्यटकों और लोगों के लिए आज भी आकर्षण का केंद्र है। देश में पूर्वोत्तर में गुवाहाटी के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन शहर माना जाता है तो वो अगरतला शहर है। यहाँ आज भी कई प्राचीन महल और मंदिर उसी शान से खड़े हैं। पर्यटन की दृष्टि से इस शहर में मनोरंजन के तमाम साधन हैं और एडवेंचर के ढेरों विकल्प हैं। ये शहर समृद्ध संस्कृति के साथ बेहतरीन प्राकृतिक सौंदर्य का सही और सजीव उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि एक समय में इस शहर पर माणिक्य राजाओं का पूर्ण अधिकार हुआ करता था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ऐतिहासिक धार्मिक स्मारकों, भवनों और इमारतों के लिए जानी जाती है। तो आइए अब आपको त्रिपुरा का एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं। शिक्षा और अब चलें अरुणाचल प्रदेश। उगते सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश को अगर हम उत्सव की भूमि कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 125 से अधिक जनजातियाँ, उप जनजातियाँ, समुदाय हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट पहचान है। तो राज्य में कुल मिला के पूरे समय, पूरे साल भर एक उत्सव का सा माहौल रहता है। जब हम कहते हैं कि ये इसकी विशिष्ट पहचान है, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से प्रत्येक जनजाति की अपनी सांस्कृतिक पहचान है, बोली है, जो एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्नता लिए हुए है। इन जनजातियों में आदि यानी आदि जनजाति अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है। आदि मूल रूप से एक कृषि प्रधान समाज है जो तीन प्रमुख त्योहार मनाता है, यानी सोलुंग, एतोरगिदी और उनिंग आरन। इन त्योहारों में अबांग या पुजारी गीत सबसे अधिक होता है। अबांग पृथ्वी पर जीवित प्राणियों की उत्पत्ति और विकास के पीछे के सभी पौराणिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के एक स्थानीय जानकार ओमिर तातिन ने हमें बताया कि अबांग तीन प्रकार के होते हैं। पहला बिन्यात, दूसरा लिमिर लिबोंग और तीसरा एकोपता ककार उबांग। पूर्वोत्तर राज्यों की अधिकांश जनजातियों के पास अपनी लिपि नहीं है और इसलिए उनके पास लिखित साहित्य नहीं है, लेकिन उनका इतिहास, लोक कथाएं और अनुष्ठानों और विशेष रूप से गीतों के रूप में मौखिक साहित्य के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उससे फिर अगली पीढ़ी तक ये प्रसारित होता रहा। और यहाँ आदि जनजाति ने अपने इतिहास, अपने संघर्ष और संस्कृति को अबांग के विभिन्न रूपों से अच्छी तरह से संरक्षित किया है।
एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। वो एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
और अब पूर्वोत्तर डायरी के लिए निर्धारित समय समाप्ति की ओर है। हम ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। हमें अवश्य ही अपने सुझाव लिखकर भेजें। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044।
खुल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये मोगरी जगाती, वो मोगरी जगाती।
अब अगले रविवार इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी।
एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।